જય ધવલા પુસ્તક તહેલી લેક્ચર નંબર 6 ઓમ નમઃ સિદ્ધે ઓમ નમઃ સિદ્ધે ઓમ નમઃ સિદ્ધે ઓમ શુદ્ધાત્મને નમઃ નમો સિદ્ધાણં નમો આયરિયાણં નમો વજ્રાયાણં નમો લોયે સૌવસાઉનં થવિય ગણગાયકમ્મં ભવિય જણાનંદકારિણં વીરં નમિયૂણબણિસ્સામો यह श्री वीरसेन आचार्य श्री जयधवला टीका है जो कषाय पाहुर तथा चुनी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुंदर भट्टारक तथा यतीशो आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। तेरहवीं पुस्तक में अभी हम दर्शन मोह सपना का अर्थाधिकार देख रहे हैं। पृष्ठ संख्या 48। ये जब हमने देखा है अनिवृत्तिकरण में जब जीव प्रवेश करता है दर्शन मोह की स्थापना के लिए, उस समय का अनिवृत्तिकरण लेना, तो शुरू में पहले ही समय में उसके पृथक पर लाख सागर वहाँ स्थिति है दर्शन मोह की। अन्य कर्मों की पृथक पर लाख करोड़ रह जाती है। अब यहाँ दर्शन मोह की बात करेंगे तो संख्यात हजार स्थिति कांडक होने के बाद वो घटते चली जाती है, फिर हजार सागर, सौ सागर, पचास सागर, पच्चीस सागर, एक सागर पल्ले तक आते हैं। तब तक कांडक का प्रमाण पल्ले के संख्यात विभाग प्रमाण। उसके बाद यहाँ से आगे जब पल्ले प्रमाण स्थिति शेष रह जाती है, उसके बाद कांडक का प्रमाण संख्यात बहुभाग होता है। तो ये संख्यात बहुभाग होते होते अंतिम संख्यात बहुभाग यहाँ पर हो जाएगा। संख्यात बहुभाग होगा तब जाके दुराप्रवृत्ति होगी। दुराप्रकृष्टि ने वहाँ पर अंतिम कांडक हुआ कौन सा? संख्यात बहुभाग वाला। अब इसके नेक्स्ट कांडक कौन सा होगा? तो असंख्यात बहुभाग वाला होने वाला, उसको कहेंगे दुराप्रकृष्टि। तो दुराप्रकृष्टि भी अनेक विकल्प वाली देखी हमने। संख्यात बहुभाग वाला नहीं, दुराप्रकृष्टि एक पॉइंट है जहाँ संख्यात बहुभाग समाप्त हुआ, वो पॉइंट उसको दुराप्रकृष्टि कहेंगे। यानी संख्यात बहुभाग नष्ट होकर जितनी स्थिति रही उस स्थिति को दुराप्रकृष्टि कहेंगे। तो ये दुराप्रकृष्टि कुछ विशिष्ट भेद वाली होगी, परंतु हमें पता नहीं है कौन सी है, इसलिए कौन सी हो सकती है इसमें आचार्यों ने अपने भेदों का कथन कहा या भेदों की बात बताई है। अब उसमें कोई एक भेद होना चाहिए, तो ये भेद कैसे होते हैं? तो जघन्य संख्यात वा भाग जब हम कहेंगे तो उत्कृष्ट संख्यात से भाग दिया तो जघन्य संख्यात वा भाग शेष रहा। कल में बस तो ये जघन्य संख्या तो अभाव जब शेष रह गया है, उसके बाद वाला जो उत्कृष्ट संख्या से भाग दिया था, अब इसके बाद क्या होगा? एक भागार में एक बढ़ाएंगे तो जघन्य असंख्यात यानी जघन्य परिता संख्यात का भागार होगा, तो वो पल्ले का असंख्या तो अभाव शेष रह जाएगा। परंतु उत्कृष्ट संख्या से भाग दिया और जघन्य परिता संख्या से भाग दिया, इन बिटवीन बहुत सारी संख्याएं रह जाती हैं, वो सारे विकल्प कहलाए गए दुराप्रकृष्टि के। उनमें से कोई एक भेद होना चाहिए। हमने उसके लिए यहाँ उदाहरण लिया था, जैसे मैंने बना के बताया कि 2400 हमने मान लिया था और उसको उत्कृष्ट संख्या 15 मानकर भाग दिया तो 160 आ गए, और जघन्य परिता संख्या 16 मानकर भाग दिया तो 150 आ गए। तो बीच वाले जो सारे विकल्प है 159, 158, 160 से लेकर 151 तक
दुरादृष्टि
ये क्या है? तो दुरादृष्टि, ये इसमें से कोई भी एक भेद हो सकता है दुराप्रतिष्ठि में, हमें मालूम नहीं है, जो सर्वज्ञ ने यथायोग्य जाना है, होगा तो एक ही, परंतु इन सबको हम दुराप्रतिष्ठि कह सकते, इसलिए अनेक विकल्प वाला दुराप्रतिष्ठि नाम का भेद होता है, ऐसा कहा उन्होंने। उन्होंने भी यहाँ एक उदाहरण दिया है, 48 पृष्ठ पर हम अभी देखेंगे। यहाँ उदाहरण में पल्लोपम का प्रमाण 20,000 मान लिया, उत्कृष्ट संख्या 4 माना है और जघन्य परिता संख्या 5 मान लिया। जघन्य परिता संख्या आसान है था। तो 20,000 को 4 से भाग दिया तो 5,000 आ गए। ये 5,000 क्या है? तो 20,000 का संख्यात्व भाग है, यानी पल्ले का संख्यात्व भाग है। ये प्रथम भेद रूप दुरापकृष्टि हो जाएगी। फिर उसके बाद 5,000 में से एक कम कर दो, 4,999, ये दूसरा भेद हुआ दुरापकृष्टि का। 4,999 में से एक और घटाना, 4,998 हो गए, तीसरा भेद हुआ। इस प्रकार एक एक स्थिति सत्कर्म विकल्प कम करते करते जब हम 20,000 को 5 से भाग देंगे, 4,000 चाहिए, 40,000 हो गया ना, तो 4,000 मिल जाएगा। इसको क्या कहेंगे? पल्य का असंख्या तो अभाव कहेंगे। ये स्थिति सत्कर्म विकल्प के प्राप्त होने के पूर्व 4,001 स्थिति सत्कर्म विकल्प के प्राप्त होने तक कम कर, एक बढ़ाकर वहां तक रुक। यहाँ 5,000 प्रमाण प्रथम स्थिति सत्कर्म विकल्प से लेकर 4,001 प्रमाण अंतिम स्थिति सत्कर्म विकल्प तक, ये 1,000 स्थिति सत्कर्म विकल्प पल्लोपम के संख्यात्वे भाग प्रमाण होने से दुरापकृष्टि के भेद ही उतने ही प्राप्त होते हैं, ऐसा टीकाकार का अभिप्राय है। उन्होंने पहले भी बताया था कि ये दुरापकृष्टि में कितने विकल्प होंगे, उसने कहा था, यह तो उन्होंने 1,000 विकल्प लिए ना, वैसे वहाँ मेरे ख्याल से पल्ले के संख्या के भाग होते कितने होते हैं?
असंख्या पल का संख्या नहीं, प्रथम वर्ग में मिलते असंख्या पल का प्रथम वर्ग में मिलते असंख्या।
हाँ, ये जो पल्ले का संख्या का भाग है वो पल्लोपम के असंख्या प्रथम वर्ग मूल प्रमाण होते हैं। ये पल्ले का संख्या के भाग के जो दुरापकृष्टि के विकल्प कितने हैं?
पल्ले का प्रथम वर्गमूल इंटू असंख्या,
पल्ले के असंख्यात प्रथम वर्गमूल, क्योंकि यहाँ तो हमने तो बहुत बड़ी संख्या ली, 1400 को 15 और 16 से भाग दिया, परंतु यहाँ तो उन्होंने 20,000 और 4-5 संख्या ली, तो इतने 1,000 विकल्प मिले। अब एक्चुअल में कितना है? एक्चुअल में तो कितनी बड़ी संख्या है, तो उसमें तो कितने सारे विकल्प मिलेंगे, इसीलिए वो कितने विकल्प हो सकते हैं? यहाँ हमने 1,000 देखे, एक्चुअल में कितने हो गए? तो पल्ले के असंख्यात प्रथम वर्गमूल का, पल्ले का वर्गमूल मल्टीप्लाइड बाय असंख्यात, इतने दुरापकृष्टि के अलग अलग भेद हो सकते हैं। पाँच हजार को भी लेना उसमें, क्योंकि उत्कृष्ट संख्या से भाग दिया था ना, उसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। यहाँ कहते इनमें से कोई एक विकल्प रूप दुरापकृष्टि अनिवृत्तिकरण में ली गई है, वह कौन सी ली गई है? इसका समाधान करते हुए उन्होंने बताया है, इनमें से जिस भेद रूप जिनेन्द्र देव ने देखी है वह ली गई है। शेष कथन सुगम। हाँ, हमने निकाला उसको, अभी बोला भी था 40,000 के बदले 4,000 चाहिए, ऊपर से पांचवी छठी लाइन 20,000 डिवाइडेड है 5, उसमें से 4,000 करना। अब 66 नंबर का पॉइंट पढ़ रही हूँ मैं। अब इस प्रकार के दुरापकृष्टि संज्ञक यानी दुरापकृष्टि नाम वाले स्थिति सत्कर्म के शेष रहने पर, यानी जब दुरापकृष्टि प्रमाण स्थिति शेष रह जाती है तब यहाँ से लेकर शेष के असंख्यात बहुभाग प्रमाण, यानी अभी यहाँ जितनी स्थिति है ये दुरापकृष्टि वाली रहेगी, अब इसके नेक्स्ट स्थिति कांड कितना होगा, तो जितनी स्थिति है उसका असंख्यात भाग करो, एक भाग शेष रखो, बाकी असंख्यात बहुभाग का कांडक होगा। यहाँ लिखा ना शेष के असंख्यात बहुभाग प्रमाण स्थिति सत्कर्म को स्थिति कांडक रूप से ग्रहण करता है। इस प्रकार इस अर्थ विशेष का ज्ञान करा कर आगे इस प्ररूपणा के अनुसार बहुत से असंख्यात गुणहीन स्थिति कांडकों के पतित होने पर, यानी एक एक पतित होगा तो असंख्यातवा भाग शेष रहेगा, स्थिति सत्व असंख्यात गुणाहीन हो गया है, असंख्यात भाग प्रमाण शेष रहेगा। कितना ही अध्वान ऊपर जाकर, यानी ऐसे ही चलते रहे इतने स्थिति कांडक बहुत सारे हो जाने के बाद, उस स्थान पर विशेष अंतर संभव है उसका कथन करने के लिए आगे का सूत्र आया है। अब कहते इस प्रकार पल्ल्योपम के असंख्यातवे भाग प्रमाण ऊपर रह गया प्राकृत एवं पलिदोवमस असंख्य यदि भागीगेषु 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 बहुएषु खिदिखंड खंडय सहस्येषु गदेषु तदो सम्मतस्य असंख्यज्ञानं समय पवद्धानं उदीर्णा। पीछे क्या लिखा है? भागीगेषु यहाँ उसका हिंदी देखें। इस प्रकार पल्ल्योपम के असंख्यात वे भाग प्रमाण वाले, ये जो बहुभाग है उसका प्रमाण भी कितना है? पल्ले का संख्या तो भाग है। बहुत हजार स्थिति कांडकों के व्यतीत होने पर वहां से लेकर, यानी यही ये जो हमने दुरापकृष्टि के बाद कांडक का प्रमाण असंख्यात बहुभाग है, असंख्यात बहुभाग उसकी वैल्यू भी कितनी है? तो पल्ले का संख्या तो भाग है। तो बहुत सारे हजारों ऐसे स्थिति कांडक हो जाने के पश्चात अब क्या होता है? सम्यक्त्व के असंख्यात समय प्रबद्धों की उदीर्णा होती है, क्योंकि हमने देखा है समय प्रबद्ध इतने सारे स्थिति कांडक हुए थे तो क्या हुआ? तो नीचे के जो निषेध थे उसमें अधिक 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 दर्ज आया, वैसे वहां गुणश्रेणी आदि भी थी ही। तो कहते अभी तो कितने निषेध उसमें उदय रूप हो रहे हैं? असंख्यात समय प्रबद्ध उदय उदय तो एक ही नहीं है, सत्ता वाला निषेक एक आ रहा है। वैसे तो नेचुरली नॉर्मली सत्ता वाला जो निषेक होता है वर्तमान उदय रूप वो एक समय प्रबद्ध प्रमाण होता है, और यहाँ असंख्या समय प्रबद्ध होने ये बात स्थिति कांडक से भी आए, गुणश्रेणी भी हुई, वो सारा चलते चलते भी असंख्या समय प्रबद्धों की उदीर्णा होने लगी, क्योंकि इतने सारे जो चल जाएंगे निकल जाएंगे तभी तो क्षय हो जाएगा ना लास्ट में। इसके पहले स्थिति कांडक आदि सभी संक्रमण भी चल रहा है, मिथ्यात्व का सारा द्रव्य इसमें आ रहा है।
तो यहाँ पे अपूर्वकरण के पहले समय से जो गुण श्रेणी हुई थी गलिता थी उदय में आ गए, तो वहाँ पे भी गुणित प्रमाण में तो परमाणु निकल ही रहे थे, तो यहाँ पे असंख्या समय प्रबद्ध
गुणित प्रमाण में निकलना अलग बात है और असंख्यात समय प्रबद्ध निकलना अलग बात है। एक समय प्रबद्ध में अनंत है जिससे असंख्यात समय प्रबद्ध निकलेंगे, वो वहां तो केवल थोड़ा असंख्यात था, यहाँ तो उसका प्रमाण बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा।
नहीं, वहां पे गुणित प्रमाण में संख्यात गुणा होगा, संख्यात
गुणा असंख्यात गुणा भी था मगर असंख्यात समय प्रबद्ध यहाँ पर आते हैं। उदय में आएगा, उदीर्णा होती है ना उदय में आएगा, क्योंकि सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा है। अभी भी सत्ता में बहुत सारा पड़ा है, लगातार इतना चला जाएगा, फिर भी अंत में कहेंगे लगभग पूरा समय प्रबद्ध रह गया है, लगभग कहेंगे। जब से वो तो मिथ्यात्व का द्रव्य लेके आया था, ये समय को प्राप्त किया, उत्सव समय को, वेद समय को, ये इतना काल बिताया, फिर भी इतना चला गया तो कहते असंख्या का ही भाग निकल गया। दुरापकृष्टि से इसका स्पष्टीकरण देखें, दुरापकृष्टि से नीचे संख्यात हजार असंख्यात गुणहानि वाले स्थित कांडकों का अपसरण कर, संख्यात हजार स्थिति कांडक होते हैं, वो स्थिति कांडक का प्रमाण बताने के लिए असंख्यात गुणहानि वाले कहा, क्योंकि एक एक कांडक में असंख्यातवा भाग शेष रह जाता है। अपसरण कर यानी उसका स्थिति कांडक घात करके संख्यात हजार स्थिति कांडकों के द्वारा मिथ्यात्व के अंतिम स्थिति कांडक को, ठीक है इस अंतराल में आगे का वाक्य क्या है?
अंतिम स्थिति कांडक के लिए जितना अंतर्मुख का उसको लिया है,
आगे का वाक्य क्या
है? इस अंतराल में,
अच्छा दुरापकृष्टि के नीचे संख्या हजार अंतिम स्थिति कांडक को है, समय के असंख्या समय प्रबोधन की उदीरणा प्रारंभ होती है, यह इस सूत्र के अर्थ का निश्चय है। मैं अभी थोड़ा प्राकृत पढ़ती हूँ। दुराव कीर्ति दो हेट्टा संख्येज सहस्त्र मेट्टानी असंख्येज गुणहानि क्षिरी खंडयानी ओसरी यून मिच्छत्त चरिम क्षिरी खंडयम च संख्येज सहस्त्र क्षिरी खंड ये हिम न पावदित्ति जब तक प्राप्त नहीं होता तब तक, ऐसा है। एदम ही अंतराले सम्मतस्य असंख्येज्यानि समय प्रबद्धानाम् उदीर्णा पारब्धास्ति सुत्तस्य निच्छवो। न पावदित्ति उन्होंने नहीं लिखा है, जब तक प्राप्त नहीं होता तब तक।
मिथ्यात्व के अंतिम स्थिति कांडक
प्राप्त होता है, नहीं होना ना होना एक ही बात होती है वैसे, वो कहने की पद्धति है, जब तक नहीं होता तब तक या प्राप्त होता है तब तक। देखो यहाँ क्या कहेंगे, देखो इस वाक्य को फिर पढ़ेंगे नीचे 67 पॉइंट। दुरापकृष्टि से नीचे संख्यात हजार असंख्यात गुणहानि वाले स्थिति कांडकों का अपसरण कर संख्या हजार स्थिति कांडकों के द्वारा मिथ्यात्व के अंतिम स्थिति कांडक को मिच्छत्त चरिमक स्थिति खंडयम च संख्येज सहस्त्र स्थिति खंडये हिम न पावदी, वो स्थिति कांडकों के द्वारा वो तो बता दिया पहले ही, मिथ्यात्व के अंतिम स्थिति कांडक को न पावदी जब तक प्राप्त नहीं होता है इस अंतराल में, या प्राप्त होता है कहेंगे तो भी चलेगा, यहाँ से लेकर प्राप्त होता है उस अंतराल में, यानी वो तो वाक्य रचने की अलग अलग पद्धति है। वही इसीलिए हमने ऊपर का पढ़ा, तो ऊपर हमने ये मिला न पावदित्ति दो पेज में मिलकर, यानी वहां तक जब तक नहीं प्राप्त होता तब तक उस अंतराल में, यानी हाँ यानी यहाँ क्या कहना चाहते हैं, दुरापकृष्टि के बाद पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण असंख्यात बहुभाग वाले स्थिति कांडक होते गए, बहुत सारे हो चुके, अभी अंतिम का नंबर नहीं आया, फिर भी वहां से लेकर सम्यक प्रकृति की असंख्या समय प्रबद्ध प्रमाण उदीर्ण होने लगे। दुरापकृष्टि के बाद हजार संख्या हजार स्थिति कांडक जाने के बाद वहां से लेकर और अभी आगे नहीं पहुंचा है कहां मिथ्यात्व की अंतिम स्थिति कांडक तक, तभी उसके बीच में क्या शुरू हुआ, समय प्रकृति के असंख्यात समय प्रबंधों की उदीरण। ये वाक्य नहीं जम रहा था ना, इसलिए हम ऊपर गए थे। मिथ्यात्व के अंतिम स्थिति कांडक को प्राप्त नहीं होता है इस अंतराल में, सम्यक्त्व के असंख्यात समय प्रबद्धों की उदीरणा प्रारंभ होती है, यह इस सूत्र के अर्थ का निश्चय है। यहां से पहले सर्वत्र ही असंख्यात लोक प्रमाण प्रतिभाग के अनुसार सब कर्मों की उदीरणा होती रही। उदीरणा तो होती है, गुणश्रेणी भी होती है, आपका जो प्रश्न था, परंतु वो कितने भाग प्रमाण होती है, तो कहते हैं जितनी संख्या है सत्ता में उसको असंख्यात लोक का भाग देकर एक भाग प्रमाण, फिर वो नीचे आ जाता है। तीनों में हो रहा है, तीनों में हो रहा है, दर्शन होने के तीनों में हो रहा है। क्यों स्थिति क्यों नहीं हो रही? मिथ्यात्व के अनुभव के कारण तीन टुकड़े हुए, परंतु तीनों टुकड़ों की स्थिति सेम रही। नहीं नहीं, तीनों की सत्ता में जो निषेध पड़े हैं वो घटेगी कि नहीं घटेगी? ऐसा नहीं मानेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। कैसे
होगा?
चार जो दिखाया था वो अनुभव का दिखाया था।
नहीं,
देखो तीनों की सत्ता पड़ी, निषेक तो तीनों के समान है, वहाँ हाँ स्थिति समान है, और उदय सम्यक प्रकृति का चल रहा था, ये द्वितीय स्थिति है। पहली स्थिति तो सम्यक प्रकृति की चल रही, उसका उदय चल रहा है, यहाँ तो अंतर के बात ही नहीं है, हम तो वो पहले वाली बात देख रहे थे। इसका उदय है सम्यक प्रकृति का, तीनों की स्थिति समान है। अब वो गुण संक्रमण तो चल रहा है, इसका इस रूप से हो ही रहा है, परंतु स्थिति कांडक के द्वारा तीनों का एक साथ स्थिति कांडक होते चला जाएगा। तीनों की होती है स्थिति, स्थिति कांडक तीनों में होता है। वो जब आठ वर्ष स्थिति रह जाती है, उसके पहले वाले की पोजीशन क्या थी? देखो अभी दो ही प्रकृति बाकी है, कौन सी? समय मिथ्यात्व और समय प्रकृति। अभी अभी सुनो, अभी ये आठ वर्ष छोड़ो नीचे, अभी इसका संक्रमण तो हो ही रहा है, अंतिम फाली देखो, अभी अंतिम फाली क्या होगी, इसकी उच्चिष्टावली छोड़ना, ये पूरी अंतिम फाली इस रूप से हो जाएगी और समय प्रकृति का स्थिति कांडक इस रूप हो जाएगा। ये अंतिम कांडक की पोजिशन है समय मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति की मात्र आठ वर्ष स्थिति रह जाएगी, ये पूरा कांडक संक्रमित होगा और इसका कांडक घात यानी स्थिति कांडक घात होगा, क्योंकि स्थिति कांडक और संक्रमण वगैरह सभी चल रहे हैं ना, बातें स्थिति दोनों की समान थी इसका। नहीं थी पहले, कांडक घात के होने के पश्चात हुई। नहीं नहीं, कांडक घात भी होता गया, संक्रमण भी हुआ, इसका लास्ट में कांडक घात होके संक्रमित हो गया, दोनों एक टाइम चला। अंतिम फाली जो है वो संक्रमित होकर वो आठ वर्ष प्रमाण में आ गई नीचे, उच्चित चावली रही, जीरो नहीं हुआ। हाँ, परंतु उदय रूप नहीं है ना, वो एक एक नीचे चला जाएगा, आवली काल में वो नष्ट होने वाला है। मिथ्यात्व की भी उच्च सावली बाकी थी।
ये जो अपन पढ़ रहे अभी
अभी अंतिम स्थिति कांडक का कौन सा वो संख्या था, संख्यात बहुभाग असंख्यात बहुभाग वाला, जब तक अंतिम स्थिति कांडक घात का भी नहीं हुआ है तब तक क्या हो रहा है, समय प्रकृति के असंख्यात समय प्रबद्ध उसका खिलना चल रहा है।
यहाँ पे मिथ्यात्व की उसकी सावधि बाकी नहीं है, वो तो पहले खत्म हो जाएगी,
अभी उसकी बात नहीं आएगी।
नहीं,
उन्होंने आगे वाला प्रश्न पूछा, उन्होंने वो 8 वर्ष संबंधी प्रश्न पूछा, वो बात अभी आई ही नहीं है, अभी हम अंतिम कांडक तक भी नहीं पहुंचे हैं। पहले कहते कि वहाँ असंख्यात लोक प्रमाण प्रतिभाग के अनुसार कर्मों की उदीर्णा होती है, यानी कितना कर्म उदयावली में देते हैं उसकी बात, यानी जितना अपकर्षित होता है, पहले अपकर्षित कितना होता है, अपकर्षण भागार से भाग लेते हैं, उसमें से उदयावली में कितना जाता है, तो जितना अपकर्षित द्रव्य है उसको असंख्यात लोक का भाग देते, भाग बड़ा है भागार तो थोड़ी संख्या जाती है। अब यहाँ भागार का प्रश्न कितना होगा प्रमाण, यहाँ पर पल्लवगम के असंख्यात रे भाग प्रमाण प्रतिभाग के अनुसार सम्यक की उदीर्णा प्रवृत्त हुई, यह उक्त कथन का तात्पर्य। यहाँ भागार बदल गया, पहले जितना अपकर्षित द्रव्य होता था, अपकर्षित द्रव्य कितना होता था, कहीं पर भी कर्मों के अपकर्षण चलता है तो कितना द्रव्य अपकर्षित होता है, तो के अपकर्षण उसको ओ कहते हैं, यानी वो द्रव्य डिवाइडेड बाय अपकर्षण भागार, इतना द्रव्य नीचे आता है इतना सारा, परंतु उदयावली में जाता है, गुणश्रेणी में जाता है, रूपरीतन स्थिति सब जगह जाता है, तो उदयावली में कितना जाता है, तो असंख्यात लोक ओके आगे असंख्यात लोक भाग देंगे उसको,
ये जो
निकाला वो उदयावली में जाता है, अब कितना जाएगा, भाग दिया एक भाग, वही भाग देकर एक भाग नीचे गया, और बहुभाग गुणश्रेणी में गया,
ऊपरी तो नहीं,
देख फिर द्रव्य के लिए हम द कहें, कितना अपकर्षित हुआ,
अपकर्षण उत्कर्षण
वो द बाय ओ, एक भाग अपकर्षित हुआ, अपकर्षित हुआ
उसमें से
इसमें से तो असंख्यात लोक का भाग दिया,
वो उदयावली में गया,
एक भाग उदयावली में गया,
एक भाग बचा, दो भाग को उसमें से चला गया, एक भाग बचा उसको पहले की असंख्या से भाग दिया और उसमें से दो भाग को दूसरे में दिया और एक भाग उसको उदयावली में दिया।
हाँ, परंतु यहाँ अभी यहाँ पर ही पल्ले के असंख्यात लोक के बदले पल्ले का असंख्यात का भाग हुआ, वो डायरेक्ट उदयावली में आया, ये बात बताना चाहते। देखो यहाँ से पहले सर्वत्र ही असंख्यात लोक प्रमाण प्रतिभाग के अनुसार कर्मों की उदीर्णा होती रही, जो उदयावली और गुणश्रेणी में देते हैं ना एक भाग प्रमाण और बहुभाग ऊपरी तन में देते हैं, अब उसके लिए असंख्यात लोक का भागार था
वो अभी पल्ले का,
अभी कितना है
पल्ले
का संख्या, परंतु यहाँ पर पल्लोपम के असंख्यात वे भाग प्रमाण प्रतिभाग के अनुसार सम्यक्त्व की उदीर्णा प्रवृत्त हुई, यानी यहाँ से शुरू हुई, यह उक्त कथन का तात्पर्य। अपकर्षित होने वाले सकल द्रव्य में ये यहाँ लिखा, अपकर्षित होने वाले सकल द्रव्य में पल्लोपम के असंख्यात वे भाग का भाग देने पर जो लब्ध आवे उतने द्रव्य को उदयावली के बाहर गुणश्रेणी में निक्षिप्त करता है, गुणश्रेणी में भी असंख्यात वे भाग मात्र द्रव्य को जो कि असंख्यात समय प्रबद्ध प्रमाण है इस समय उदीरित करता है। ओ क्या कहना चाहते हैं, गुणश्रेणी में जो द्रव्य दिया था वो आवली के ऊपर है, उदयावली के बाहर है ना, तो उसमें से भी उदीर्णा होगी कि नहीं होगी, ये जितना गुणश्रेणी में बहुत द्रव्य दिया है उसका भी असंख्यात वा भाग उदीर्णा हो चलाएगा, इस प्रकार इस बात का इस सूत्र द्वारा ज्ञान कराया गया है। इससे आगे सर्वत्र ही सम्यक्त की उदीरणा का क्रम यही जानना। अभी विशेषार्थ में और कुछ बताएंगे, देखेंगे। दुरापकृष्टि के बाद कितने स्थिति कांडकों के घाते जाने पर मिथ्यात्व का कितना स्थिति सत्कर्म शेष रहते हुए सम्यक्त के असंख्यात समय प्रबद्धों की उदीरणा प्रारंभ होती है, इस तथ्य को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। यहाँ से पूर्व सब कर्मों की उदीरणा असंख्यात लोक के प्रतिभाग के अनुसार होती, परंतु यहाँ से सम्यक्त की उदीरणा क्रम बदल जाता है। यहाँ से आगे सम्यक्त के द्रव्य में पल्योपम के असंख्यातवे भाग का चाहिए, असंख्यातवे भाग का भाग देने का, पल्य के असंख्यातवे भाग का रह गया वहां पर वो डालो, पल्योपम के असंख्यातवे भाग का भाग देने पर जो लब्ध आवे उतने द्रव्य की उदीरणा होने लगी है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए बतलाया है, समस्त द्रव्य में पल्योपम के असंख्यातवे भाग का भाग देने पर जो लब्ध आवे उतने द्रव्य को उदयावली के बाहर निक्षिप्त करता है, तथा गुणश्रेणी के द्रव्य का असंख्यातवा भाग जो कि असंख्यात समय प्रबद्ध प्रमाण होता है उसे उदीरित करता है। क्योंकि ऐसे तो गलित अवशेष है ही है, वो भी उदयावली में प्रवेश कर रहे हैं और जो आवली के ऊपर गुणश्रेणी के निषेक है उसमें से भी उदीरणा हो रही है, क्योंकि जो उदीरणा होती है वो उदयावली के ऊपर के सभी निषेकों में से उदयावली में आकर माल आता है। समय प्रकृति उसमें उदीरणा तो कहेंगे नहीं ना, एक समय के ऊपर जब हाँ उनकी गुण यहाँ उदीरणा कहेंगे, क्योंकि उदय तो समय प्रकृति का चल रही, उसमें गुणश्रेणी चल रही, गुणश्रेणी सभी कर्मों में मिथ्यात्व तो में भी चल रही है, समय मिथ्यात्व तो में भी उसमें उदीरणा किसको कहेंगी जिसका उदय है। तो बाकी कर्मों में तो गुणश्रेणी तो है परंतु उसके उदीरणा उदय नहीं होंगे, क्योंकि वो भी गुणश्रेणी का माल भी वो सारा टर्न होकर समय प्रकृति रूप से उदय में आ रहा है। गुणश्रेणी से सब में ज्यादा गया, परंतु गुणश्रेणी में से जो उदय में आना है, उदयावली यानी उदय रूप हो जाना है, वो समय प्रकृति में चलेगा। भागार सबके लिए यही हो जाएगा, भागार तो बदल गया, परंतु उदय उदीरणा किसकी कहेंगे हम, समय प्रकृति। असंख्या तो भाग लिया, एक भाग लिया तो बहुभाग ऊपर गया,
बहुभाग की बात है, एक भाग बचा है वो मुझे भी देना है और उद्यालय में भी देना है, उसका विभाजन का क्या रहेगा।
उदयावली में उसका जो चय का प्रमाण निकाल कर एक एक कम एक हीन पद्धति से देते हैं, और गुणश्रेणी में उसको अंक संदृष्टि से बतलाया, 85 से भाग दे दो और 1, 4, 16, 64 उस क्रम से दे दो, वैसे होता है।
ये तो हाँ,
यानी कितना भाग उदयावली में जाएगा उसमें भी एक भाग बहुभाग ऐसा कुछ है, उसके लिए भी भागार है, उसके लिए फिर पल्ल का संख्या तो डबल होता है पल्ले का आसन। हाँ, गलितावशेष भी है और जो ऑलरेडी है गुणश्रेणी उदयावली के ऊपर है उसमें से भी नीचे मार उदयावली के ऊपर गलितावशेष है, उदयादि गुणश्रेणी नहीं है, उदय है तो गलितावशेष अवली के ऊपर है, तो उसके भी निषेक तो उदयावली के निषेक बड़े बड़े तो है ही है, परंतु गुणश्रेणी की भी वहाँ से उदीरणा हो रही है, वो भी नीचे आ रहा है। आपका पॉइंट सही है। पहले हमने असंख्यात लोक का टोटल भाग दिया था और उसमें से एक पल्ले का असंख्यात और भाग से भाग देकर गुण श्रेणी प्लस उदयावली में जो कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, एक भाग तो दोनों में मिलकर आया, उसमें से एक भाग उदयावली में, बहुभाग गुण श्रेणी में। अब क्या करना, जो पल्ले के असंख्या पहला भाग है लोक का असंख्यात लोक का, उसको पल्ले का असंख्यात और भाग किया, यानी बहुत द्रव्य नीचे गुण श्रेणी प्लस उदयावली में आया, फिर उसको दोबारा पल्ले का असंख्यात और भाग दो, एक भाग उदयावली में, बहुभाग गुण श्रेणी में। अब वहाँ जो गया है उसमें से सभी निषेकों में से उदीर्ण होगी, जिस निषेक में जितना द्रव्य होता है उसको उस भागार से भाग देना है हमको, तो उसमें बहुत ज़्यादा उदीर्ण हो जाएगी।
दो भागार हमने उपशम में देखा था, द्वितीय स्थिति और प्रथम स्थिति में, कि यहाँ पे भी दो भागार ले लेंगे।
नहीं, अलग अलग होते हैं ना, भागार भी बदल के चल गया, सामान्य कथन होता है।
वहाँ पे तो एक भागार से भाग गया, एक भाग नीचा है और दूसरा बहुभाग ऊपर गया। अभी यहाँ पे जो अंतर तो हुआ नहीं है, तो एक भाग नीचा
है, इसलिए उदयावली गुण श्रेणी और डायरेक्ट उपरितन,
ऐसा तीन जगह जाएगा।
एक भाग नीचे के दो में, उसमें भी फिर और एक बार भाग देकर नीचे ऊपर करेंगे, उदयावली और गुण
श्रेणी।
और उपरितन का तो अलग होता है, वहाँ निषेक ज्यादा है इसलिए बहुभाग देकर भी वहाँ दिखने में कम माल दिया, ऐसा दिया जाने वाला द्रव्य वहाँ कम होता है। उदयवरी में प्रवेश कर रहे
हैं, हाँ, ये अभी जो बोल रहे हैं
पहले भी हो सकता था, परंतु अभी भागहार पल्ले का असंख्यात अभाव, पहले असंख्यात लोक था, इसलिए गुणश्रेणी भी बहुत बड़ी है और वहाँ से उदीर्ण होने वाली भी बहुत ज्यादा, ये बात इसलिए
बड़ी।
हाँ, पहले भी यही पद्धति से गुणश्रेणी में से उदीर्ण पहले भी हो रही थी, पर उसका प्रपोर्शन अभी बहुत ज्यादा बढ़ गया भागहार छोटा होने से। यह विशेषांक हम पढ़ रहे थे, ये भाग का हो गया, शेष कथन स्पष्ट
है,
करेक्शन हो गया ना। उसके बाद इसी बात को स्पष्ट करते हुए बताया कि समस्त द्रव्य में पल्लेपुंग के असंख्या से भाग का भाग देने पर जो लब्ध आवे उतने द्रव्य को उदयावली के बाहर निश्चित करता है, तथा गुण श्रेणी के द्रव्य का असंख्यात भाग जो कि असंख्यात समय प्रबद्ध प्रमाण होता है उसे उदीरित करता है। आगे सर्वत्र उदीर्णा का यही क्रम चलता रहता है, शेष कथन स्पष्ट है। अब इसके आगे का सूत्र पढ़ेंगे। तदो बहुसु चिदिखंडेषु गदेषु मिच्छत्तस्य, ये डबल से चाहिए, मिच्छत्तस्य आवलीय बाहिरम सर्वम आगाइदम सम्मत सम्मम इच्छत्ताणम पलिदोमस असंख्यज्यादि भागो शेषो। देखो अभी जो मिथ्यात्व की अंतिम कांडक की अंतिम फाली गिरेगी, संक्रमित हो जाएगी, उस समय स्थिति कितनी शेष है, तो पल्ले का असंख्यात्व भाग अभी भी शेष है, उसमें से मिथ्यात्व का आवली प्रमाण शेष रखकर पूरा नष्ट हो जाएगा। बाकी दो प्रकृतियों की स्थिति कितनी रहेगी, पल्ले का असंख्यात्व भाग जो हमने आठ वर्ष प्रमाण रहने वाले हैं ना,
तो सम्यक करते लास्ट,
हाँ, उसके पहले भी पल्ले का असंख्या तो भाग ही रहेगा, यानी यहाँ मिथ्यात्व की अंतिम फाली जो स्थिति कांडक की है वो पल्ले के असंख्या तो भाग प्रमाण है। इसके अंतिम का ही कांडक आयाम अलग है, अंतिम का, क्योंकि अभी इसको नष्ट होना है, तो इसका एक कांडक में पूरे झटके से सब नष्ट हो जाएगा और बाकी का चलेगा। हाँ, मात्र से लास्ट कांडक में मिथ्यात्व के अंतिम कांडक में, हाँ समान था ना,
क्या सभी प्रकृति के लिए तीन करण परिणाम अलग अलग से होता है? नहीं, हाँ अलग अलग होता है। पहले अनंत आदिबंदी की विषय योजना होगा,
उसके तीन करण अलग से।
हाँ, पीछे इसका सभी का एक साथ होगा? नहीं
नहीं, अभी तो इसके अनिवृत्ति करण में आए ना, अभी इसको तो समाप्त होने को आए ना।
हाँ।
पढ़ेंगे ना अभी, देखो तदो बहुसु त्रिखंडेषु गदेषु मिच्छत्तस्य आवलिय बाहिरं सर्वम् आगाइदं सम्मत सम्मा मिच्छत्तानं परिदोमस्य असंख्य इत्यादि भागो शेषो। उसका हिंदी, तदनंतर बहुत स्थिति कांडकों के व्यतीत होने पर, हमने देखा था ना बीच में ही वो असंख्यात समय प्रबद्ध की उदीर्णा होने लगी थी, अब उसके बाद और भी स्थिति कांडक हो गए। मिथ्यात्व के उदयावली से बाहर के सब द्रव्य को ग्रहण किया, अकेले मिथ्यात्व में बात की। ग्रहण किया का अर्थ क्या है? हाँ, वो कांडक बनाया। उस समय सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का पल्लोपम के असंख्यात वे भाग प्रमाण द्रव्य शेष रखा, शेष सब द्रव्य घात करने के लिए ग्रहण किया। यानी उसके भी ऊपर ज्यादा था, भले पल्ले का असंख्यात भाग था, परंतु वहां पर भी उसका भी जो कांडक हुआ उस समय का, वो भी असंख्यात बहुभाग वाला था। मिथ्यात्व का तो पूरा ले लिया, उसमें पल्ले का असंख्यात भाग शेष रहा, और फिर उससे असंख्यात गुणा ऊपर था उसको नष्ट कर दिया। क्योंकि यहाँ तो अभी हम क्या कहेंगे, गुण संक्रमण चल रहा था, ये गुण संक्रमण की अंतिम खाली है, वो अन्य रूप हो जाएगी, यानी उसकी स्थिति भी घट जाएगी और जो बाकी है तो समय मिथ्या के रूप में सब समय प्रकृति रूप हो जाएगी। इस प्रकार असंख्यात समय प्रबद्धों की उदीर्णा करने वाले जीव के फिर भी जो प्रत्येक स्थिति कांडक हजारों अनुभाग कांडकों का अविनाभावी है, ऐसे संख्यात हजार असंख्यात गुणहानि स्वरूप स्थिति कांडकों के व्यतीत होने पर अनंतर मिथ्यात्व के अंतिम स्थिति कांडक को ग्रहण करते, मात्र मिथ्यात्व को लिया, इस जीव ने मिथ्यात्व के उदयावली के बाहर के समस्त ही स्थिति सत्कर्म को ग्रहण किया। ग्रहण किया ने कांडक रूप से ग्रहण किया, उसका एक कांडक बनाया, शेष कितना रखा? उदयावली के नीचे शेष रखे और बाकी सबको कांडक रूप से ग्रहण किया। परंतु सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के नीचे पल्लोपम के असंख्यात वे भाग प्रमाण द्रव्य को छोड़कर, एक्चुअली द्रव्य ने स्थिति को छोड़कर चाहिए, शेष असंख्यात बहुभाग प्रमाण द्रव्य को ग्रहण किया, यह उक्त कथन का तात्पर्य। मूल में उन्होंने द्रव्य शब्द डाला होगा, वहां द्रव्य नहीं लिखा है, ऊपर क्या लिखा देखो, तीसरी लाइन में सम्मत सम्मा मिच्छत्तानं पुनः पेठा पलिदोमस असंख्येजरी भागमेत्तम मोत्तुन शेषा असंख्येजा भागा आगा इदानी की भणितम होई। प्रश्न चिन्ह क्यों लिया? यानी द्रव्य शब्द डाला है ना उस पर में, यानी इतना ही लिखना था यहाँ पर, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के वो नीचे कौन से कितना स्थिति छोड़नी है? पल्लोपम के असंख्यात वे भाग प्रमाण को छोड़कर, यानी उस स्थिति को छोड़कर, द्रव्य की ऊपर द्रव्य शब्द ही नहीं है, या ऐसा नीचे पल्लोपम के असंख्यात वे भाग प्रमाण को छोड़कर शेष असंख्यात बहुभाग प्रमाण को ग्रहण किया, क्योंकि कांडक में तो निषेकों को ही ग्रहण करते हैं, यहाँ स्थिति या निषेक चाहिए था शब्द। शंका, इतने काल तक ये आपके प्रश्न का उत्तर आया, शंकाकार ने वही पूछा इतने कहां तक तीनों कर्मों के सदृश ही स्थिति कांडक घात करने वाला जीव, तो ये हम क्या है थोड़ा अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मालूम है उनको कौन से प्रश्न निकलने वाले हैं। इतने काल तक तीनों कर्मों के सदृश ही स्थिति कांडक घात करने वाला जीव इस स्थान पर इस प्रकार विसदृश रूप से स्थिति कांडक घात को किस लिए ग्रहण करता है? उसका समाधान, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इन तीन कर्मों में सबसे पहले ही विनाश को प्राप्त होने वाले मिथ्यात्व कर्म का इस स्थान पर विशेष घात संभव है, इसमें कोई विरोध नहीं। भले एक ही परिणाम के द्वारा ये सब हो रहा है, प्रकृति भी तीनों दर्शन भूमि की थी, अब तक सबका स्थिति कांडक घात होते होते सबकी समान स्थिति चल रही थी, फिर इस पोजीशन पर आके अभी मिथ्यात्व की पूरी क्षपणा होनी है, पूरे ही सारे निषेकरण होने वाले हैं, तो कहते उसका विशेष घात होता है। इस प्रकार मिथ्यात्व के अंतिम स्थिति कांडक को ग्रहण कर अंतर्मूर्त काल द्वारा उसका घात करता हुआ, क्योंकि स्थिति कांडक घात के लिए भी अंतर्मूर्त लगता है, मिथ्यात्व की अंतिम फाली को क्या सम्यक मिथ्यात्व के ऊपर प्रक्षिप्त करता है, या सम्यक के ऊपर ऐसी पृच्छा होने पर नियम से सम्यक मिथ्यात्व के ऊपर प्रक्षिप्त करता है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। आपको शायद याद है सम्यक मिथ्यात्व के उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति कब होती है? सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति जब मिथ्यात्व का द्रव्य पूरा का पूरा अंतिम फाली रूप से सम्यक मिथ्यात्व रूप होता है तब। इसलिए ये प्रश्न जो पूछा था ना उसका उत्तर, जैसे हमने प्रकृति स्थिति अनुभाग ये सब विभक्ति या उसकी जो देख के आए हैं वो यहाँ उसका एहसास होगा ज्यादा। हाँ, पूरे स्थिति कांडक और संक्रमण दोनों ही चल रहे हैं, यानी स्थिति कट होते होते संक्रमित भी हो रहे हैं, समय मिथ्या तो रूप से सब चल जाएगा। मैंने अभी तक तो तीनों की समान हो रही थी ना, कांडक घात अभी तक तो समान हो रहे थे, अभी जो लास्ट पोजीशन पर यहाँ का जो स्थिति कांडक घात होगा तो इसके और इसके पल्ले के असंख्या से भाग प्रमाण स्थिति शेष रही,
पर इसका पूरा घात हो गया।
अब इसका इतना घात नहीं, यहाँ तक का घात हो गया, ये इतना पूरा घात होकर इसमें जो कुछ यथा हुए इसमें चला गया, इसका भी इतना घात होकर इसमें रह जाएगा, इसका भी इसमें आ जाएगा, इसका भी इसमें आ जाएगा, अपना अपना स्थिति कांड, पर मिथ्यात्व का सारा समय मिथ्यात्व रूप आ जाएगा। अब इसके बाद दोनों की यानी समय मिथ्यात्व और समय प्रकृति की स्थिति कितनी शेष है?
पल्ले
का संख्या का विशेषार्थ। हाँ, हाँ, स्थिति सत्कर्म सब कर्मों की बात थी ना, सब कर्मों की बात थी। यथायोग्य सब कर्मों में होगा, वहाँ उसमें भी स्थिति कांडक तो होगी उसमें। जो सपना करके आया है उसके तो सत्ता में है ही नहीं ना, उसका सवाल ही कहाँ का, उसने तो पहले ही घटा दिया, उसके अन्य ही कर्म बाकी है। यानी वहाँ चर्चा अन्य कर्मों की थी।
एक ही टाइम पर दो जीव सत्र किसकी
एक उपचर था एक टाइम पर
हाँ और एक अच्छा उत्सव श्रेणी नहीं चढ़ते हुए एक सपना कर ऐसा ले
उसमें याद और मानते हैं कि सपना भी तो बराबर बराबर होना चाहिए ना इसी पॉइंट से जाएंगे लेकिन मेरे इसमें कि जो उत्सव श्रेणी से चल के आया है मैं अपने सब कपड़ों में मानेंगे कि उसकी वहाँ हुई है दुनिया अक्सर होना चाहिए था
पहला स्थिति खांडघात कम ज्यादा किया था ना ये अनुरुचिकरण अपूर्वकरण सबसे ये बात चली थी वहाँ से वो कांडक का घात कांडक का प्रमाण उतना ज्यादा था वहाँ पर अनिवृत्तिकरण का पहला कांडक होने के पश्चात समानता हो गई शुरुआत की थी असमानता थी पहले से थी अपूर्वकरण के शुरुआत में भी थी अपूर्वकरण के अंत में भी थी अनिवृत्तिकरण का एक कांडक हुआ तब जाके समानता हो गई इसीलिए वहाँ असमानता थी वही तो प्रश्न पूछा था ना वहाँ कोई उपशम से नहीं चढ़ के आया है कोई डायरेक्ट कर रहा है तो उनमें असमानता तो थी उसमें तो इतना संख्यात्व भाग प्रमाण उतनी कम थी किसी की ये भी बात आई थी किसी की विशेष अधिक है किसी का संख्यात गुणा है ये बात आई थी ना वहाँ पर हाँ अभी यहाँ का विशेष आज पढ़ेंगे हम पेज नंबर 50 नीचे जिस समय यह जीव मिथ्यात्व कर्म की क्षपणा के लिए मिथ्यात्व के उदयावली बाह्य समस्त द्रव्य को अंतिम कांडक रूप कांडक के रूप में ग्रहण करता है यहाँ द्रव्य कह सकते हैं परंतु यहाँ तो पूरी की पूरी स्थिति सभी ले लेना सभी निश्चित उस समय वह सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के पल्यकों के असंख्यात भाग प्रमाण द्रव्य को ये द्रव्य शब्द इन्होंने ही डाला है यहाँ स्थिति ही चाहिए द्रव्य कहने से परमाणु की संख्या हो जाती है और यहाँ तो निषेकों की बात है स्थिति की बात है हाँ इनको छोड़कर शेष असंख्यात बहुभाग प्रमाण द्रव्य को यानी स्थिति को घात करने के लिए ग्रहण करता है इस पर यह शंका उठाई गई है यहाँ से पूर्व तीनों कर्मों के सदृश ही स्थिति कांडक घात होते रहे यहाँ इस विषमता का क्या कारण है इसका यहाँ जो समाधान किया गया है उसका आशय यह है मिथ्यात्व कर्म का सबसे पहले घात होता है इसलिए यहाँ पर उसका शेष दो कर्मों की अपेक्षा विशेष घात होने में कोई विरोध नहीं है यानी हर पॉइंट पर यही बात सिद्ध होती है परिणाम एक है फिर भी कुछ कर्मों में ये बात विशेष घटित होती है कुछ में नहीं होती अब तक तो समान हो रहा था ना दोनों का तीनों का अब मिथ्यात्व जाने वाले तो मिथ्यात्व में सबसे पहले बात हो जाती ये भी बात सिद्ध होती कि यहाँ उतनी विशुद्धि है और फिर भी अन्य कर्मों में इतना घात नहीं हो रहा है दर्शन होने में हो रहा है अभी सब कुछ भी नाम दे दो उसको
हमको नहीं सोचना है
क्योंकि चारित्र की सपना में भी पहले क्रोधी क्यों जाता है
हाँ।
पहले मान क्यों नहीं जाता
तो प्रकृति की ऐसी
हाँ। वो फिर वो उपादान के ले लो ना उस प्रकृति की हमें मिथ्या तो कोई जीव से छुटकारा पहले
मिलता है जीव ने यार मिथ्या तो नहीं पकड़ा है जीव ने पकड़ा है ना जीव ने पकड़ा है
हाँ तो मिथ्या तो ही छूटा ना हम तो जीव का मोक्ष कहते कर्मों का भी मोक्ष हो गया कि नहीं उनके लिए हाँ। उस जीव से छुटकारा हुआ बाकी सब जीव पड़े हैं उसके लिए अभी 51 नंबर पुष्प पर आए सूत्र पढ़ेंगे। तदो खिदिखंडये निट्ठायमाने निच्छिदे मिच्छत्तस्य जहन्नो खिदिसंत जहन्न ठिदि संकमो उपकस्सो पदेश संकमो साधे सम्मामिच्छत्तस्य उपकस्सवम पदेश संतकम्मम। संतकम्मम का अर्थ होता है सत्कर्म और संकमो यानी संक्रम। हम पढ़ेंगे हिंदी, आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। इस प्रकार मिथ्यात्व के समाप्त होने वाले अंतिम स्थिति कांडक के समाप्त होने पर, यानी उसका अंतिम फल की बात है। मिथ्यात्व का जघन्य स्थिति संक्रम और उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम होता है। इसका अर्थ क्या है?
मिथ्यात्व का मिथ्यात्व
स्थिति संक्रम का अर्थ क्या है?
ऊपर के स्थिति से नीचे वाले
स्थिति का संक्रमण, स्थिति घट जाना, अपकर्षण होकर स्थिति घट जाना। अब वो अपकर्षण होकर अन्य प्रकृति रूप भी हो रहा है,
वो
तो ये अंतिम कांडक है उसका। तो अभी कम से कम उसका है, अभी तक कितना था, जितनी स्थिति रहेगी थी उदयावली को छोड़ो, बाकी उतना सबको अपकर्षण हो रहा था। उदयावली में भी आ रहा था, सॉरी समय प्रकृति रूप से उदयावली में आ रहा था, यानी उस सबका अपकर्षण तो हो ही रहा था, अपने अपने नीचे के निशिकों में आ रहे थे। अंतिम कांडक के भी जब तक कांडक चल रहा था
तभी तक
उसका भी एक एक निशय कम हो रहा है। जब अंतिम फाली में पहुंच गया, अब मिनिमम पॉसिबल स्थितियों में से उसका संक्रमण चल रहा है, तो जघन्य स्थिति संक्रमण और प्रदेश संक्रमण उत्कृष्ट। हमेशा ये रूल है कि जो पहली फाली होती है उससे असंख्यात गुना, दूसरी तीसरी उससे असंख्यात गुना। अब मान लेते 10 फालियां तो पहले से 9 तक के टोटल करेंगे, उससे भी असंख्यात गुना 10 की फाली,
असंख्यात बहुभाग
लास्ट, तो लास्ट में तो असंख्यात बहुभाग होता है, करीबन पूरा द्रव्य उसी में पड़ा रहता है। इसलिए यहाँ कहा उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम होता है, ये सारे के सारे परमाणु भी समय मिथ्यात्व रूप से हो जाएंगे। तथा उसी समय, ये जो प्रोसेस है उसी समय सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म होता है। ऊपर संक्रम शब्द आया है, सत्कर्म है, सत्कर्म है ना, उसके परमाणुओं की संख्या मैक्सिमम इस पोजीशन पर हो जाती है, क्योंकि इसके आगे उसके भी कांडक हो गया, समय प्रकृति रूप से टर्न होते रहते हैं, तो इस पोजीशन पर उसका मैक्सिमम। हाँ, स्थिति का संक्रमण, स्थिति का संक्रमण में अपकर्षण भी ले सकते हैं और वो स्थिति घटकर अभी समय मिथ्यात्व के असंख्य, यानी पहला जो बड़ा इतने थे ना स्थिति, वो घटकर इसमें में आ गई, अभी इतनी स्थिति में आ गई। स्थिति संक्रम में तो मात्र अपकर्षण को भी स्थिति संक्रम कहते हैं। वो एट ए टाइम दोनों ही, सब ही एक साथ, इसकी स्थिति घटकर ये पल्ले के असंख्यात विभाग में आ गई थी, तो इसका जो स्थिति संक्रम भी है वो जघन्य। अब तक क्या था,
बड़ा था,
अभी ये घटते घटते इस पोजीशन पर आ गया। आप कहेंगे पूरे थ्रू आउट लास्ट कांडक में उतने की उतनी रखा हो ना स्थिति, उसमें भी एक एक समय उदयावली में यानी अंतर्मूर्त के निषेक उसमें भी घट गए। अंतिम पोजिशन पर अभी जितना उदयावली के ऊपर है वो सारा इसमें, हाँ उसको संक्रमण नहीं कहेंगे, उसमें बाकी। हाँ वो जघन्य, उसका प्रमाण जो इतने निषेकों में से संक्रमण उसको स्थिति संक्रम कहेंगे। हाँ दोनों ले, उदयावली तो सम्यक प्रकृति की चल रही है, यहाँ उसके अपने उदयावली में थोड़े चले जाएंगे, थोड़े निषेक जाएंगे उसके, थोड़े द्रव्य नहीं, थोड़े निषेक नहीं, थोड़ा द्रव्य उसमें भी चला जाएगा, उसके अपने में भी थोड़ा आकर्षण होगा, परंतु अभी मेजॉरिटी किस में जाएगा, समय मिथ्यात्व में चला जाएगा। अभी इसको पढ़ेंगे देखो, वहां पर मिथ्यात्व के क्रम से समाप्त होने योग्य अंतिम स्थिति कांडक के समाप्त होने पर उसी समय, यानी अंतिम फाली गिर गई यानी समय मिथ्यात्व रूप से हो गई, उसी समय यानी जब होते होते उस समय क्या हो रहा है, मिथ्यात्व का जघन्य स्थिति संक्रम होता है, क्योंकि मिथ्यात्व का इससे जघन्य अन्य स्थिति संक्रम नहीं पाया जाता। कितना था वो भी पल्ले का असंख्यात्व भाग था, तथा उसी समय मिथ्यात्व का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम होता है, क्योंकि यहाँ पर सर्व संक्रमण है, अभी तक गुण संक्रमण होता आया है, अभी जितने हैं वो सारे संक्रमित हो रहे हैं, क्योंकि मिथ्यात्व के समस्त द्रव्य का सर्व संक्रम से संक्रम करने वाले जीव के उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम की व्यवस्था बन जाती है। इतनी विशेषता है कि गुणित कर्मांशिक नारद भव से पीछे आकर मनुष्य पर्याय को ग्रहण करने वाला यह जीव आगम में बतलाई हुई विधि के अनुसार अतिशीघ्र आकर दर्शन मोह की क्षपणा के लिए उद्यत हुआ, तब उसके मिथ्यात्व का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम होता है। देखो स्थिति में तो समानता हुई थी, प्रदेश तो क्या होगा, वो तो उसमें असमानता रहेगी, ख्याल में आएंगे बस। हमने देखा था पहले कितनी भी स्थिति थी सबकी समान की थी, स्थिति तो समान हुई पर उन्होंने परमाणु की संख्या अभी भी वेरिएबल है। तो हमने पहले गुणित कर्मांशिक वाला देखा था, सातवें नरक में वो अंतिम समय में होता है, फिर वहाँ से आया दो तीन वो सीरियंस के किए मनुष्य में आया, आठ वर्ष के अंतर्मुख के बाद उसने
सपना का काम
किया। सपने ने पहले ऑप्शन समय जिससे होगा वेदक होगा और फिर सपने का लुक करेगा, आगम के अनुसार चलेगा सब, क्योंकि गुणित कर्मांशिक है ना तो लंबे काल से वो मिथ्या तो नहीं पड़ा है, अभी वो औक्षमिक ही करेगा, फिर अंतर्मूर्त में वेदक होगा और अंतर्मूर्त में ही सपना चालू करेगा, तो उसकी सत्ता में मैक्सिमम द्रव्य पड़ा है। अन्यथा अगर वो जीव नहीं लेंगे तो क्या होगा, अजगण्य अनुत्कृष्ट प्रदेश संक्रम होता है, ऐसा कहना चाहिए। यद्यपि सूत्र में गुणित कर्मांशिक की विवक्षा से उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम का निर्देश किया है तो भी कुछ विरुद्ध नहीं है, तथा उसी समय सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म उत्पन्न होता है, क्योंकि मिथ्यात्व का कुछ कम डेढ़ गुणहानि गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण समस्त द्रव्य उस रूप से परिणम जाता है। ये डेढ़ गुणानि गुणित समय प्रबद्ध क्या होता है, सत्ता में पड़ा हुआ द्रव्य, किसी भी कर्म सत्ता में कितना है, डेढ़ गुणानि गुणित समय प्रबद्ध। तो कहते किंचित कम क्यों किया, किंचित कम क्यों किया, जब से समय दृष्टि हुआ है तब से लेकर अभी तक
कुछ कम
जितना सम्यक प्रकृति रूप से खिल गया ना, समय निकला तो समय प्रकृति रूप होता गया,
वो किंचित कम,
भले वो दो शास्त्र सागर कहो या अन्य जो कुछ कहो, कितना गया और एक एक फाली करके अंतिम फाली तक आ गया, फिर भी कहते कुछ कम हुआ, यानी बहुत सारा
माल पड़ा,
यानी डेढ़ गुणानि गुणी समय प्रबद्ध अंतिम फाली में है उसके। तो कहते उसका मिथ्यात्व का कुछ कम डेढ़ गुणानि गुणी समय प्रबद्ध प्रमाण समस्त द्रव्य उस रूप से ने समय मिथ्यात्व रूप से परिणम जाता है, इसलिए मिथ्यात्व के जघन्य स्थिति संक्रम के साथ प्राप्त हुए उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम के प्रतिग्रह वश, ये प्रतिग्रह क्या होता है लक्ष्मीबेन, हाँ
संक्रमण
मिथ्यात्व का संक्रमण हो रहा है, किसमें हो रहा है, समय मिथ्यात्व, उसको प्रतिग्रह कहेंगे, जिस रूप होता है ना उसको कहेंगे प्रतिग्रह रूप प्रकृति। तो कहते हैं प्रतिग्रहवश उसी काल से संबंध रखने वाला समय मिथ्यात्व का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम होता है, यह सिद्ध होने उसी समय होता है, उसके पहले भी नहीं था, उसके पश्चात भी अपकर्षण होगा, स्थिति कांड घात होगी, जो कुछ होगा संक्रमण भी चलेगा, इसके बाद भी कम होने वाला है। मैक्सिमम कब है? तो इस पॉइंट पर। अब 52 पृष्ठ पर आते हैं। विशेषांक, जिस समय दर्शन मोह की क्षपणा करने वाला यह जीव अंतिम स्थिति कांडक का सर्व संक्रम के द्वारा पतन करता है, उस समय मिथ्यात्व का सबसे जघन्य स्थिति संक्रम होता है, क्योंकि अनिवृत्ति रूप परिणामों के द्वारा, ये समान परिणाम है ना और अधिक विशुद्धि वाले हैं, दुरापकृष्टि रूप से घातित करने के बाद शेष बची हुई स्थिति के जघन्य होने में विरोध का अभाव है। मैंने ये तो पहले का असंख्यात भाग, वो भी कितनी बार घट के यहाँ बहुत जघन्य हो गई स्थिति, इससे अल्प स्थिति संक्रम अन्यत्र संभव नहीं है। यदि यह गुणित कर्मांशिक होने के साथ अतिशीघ्र नारक भव से आकर दर्शन मुख की क्षपणा करता है, तो इसके अंतिम स्थिति कांडक की अंतिम फाली के पतन के समय उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम होता है, क्योंकि इस समय मिथ्यात्व के डेढ़ गुणाने गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण समस्त द्रव्य का सर्व संक्रम देखा जाता है, और यतः इस अंतिम फाली का पतन सम्यक मिथ्यात्व में होता है, अतः उसी समय सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म होता है। इस प्रकार इन तीन विशेषताओं का उल्लेख इस सूत्र में किया गया है। क्या क्या तीन बातें बताई? मिथ्यात्व का जघन्य स्थिति संक्रम, मिथ्यात्व का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम, और सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म। तीन बातें आई ना, ये पहले पढ़ चुके हम, सूत्र में ही आई बात। अब इससे आगे दो समय कम एक आवली मात्र काल जाकर मिथ्यात्व का जघन्य स्थिति सत्कर्म होता है, इसका ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। अब इस पोजीशन पर ये जो द्रव्य तीनों है ना, मिथ्यात्व का द्रव्य कितना था? तो उच्चिष्टावली, परंतु उच्चिष्टावली जब आवली कहेंगे,
एक विशेषता
आवली अगर हम 16 समयों की कहेंगे, तो नीचे का जो निषेक है तो सम्यक प्रकृति रूप होकर उदय में आता है, तो यहाँ कितने शेष रहे?
15
तभी ये खिरते 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 यहाँ एक मिथ्यात्व रूप से रहा
मिनिमम,
तो वहाँ क्या कहेंगे उसको?
मिनिमम
दो समय कम एक आवली प्रमाण काल के व्यतीत होने, ये इसका नंबर कब आएगा? एक जब रहेगा, ये कब होगा? जब 14 समय पास हो जाएंगे तब,
तभी।
अंतिम खाली खिल गई।
एक विषय बात,
हमने 16 समय मान लिए ना, 16 समय में नीचे तो कुछ नहीं, वो तो मिथ्या तो रूप से रहता ही नहीं, समय मिथ्या है, सॉरी समय प्रकृति रूप से उदय में आता है, समय प्रकृति रूप हो जाता है, तो यहाँ कितने रहे? ये 16 गया, अब ये 15वां, उसका नंबर कब आएगा? तो 14 समय बीत जाने पर आएगा। ख्याल में ही बात, इसलिए कहते दो समय कम आवली बीत जाने पर, यहाँ लिखा ना, तदो आवली आए दो समयुणाए गदाए मिच्छत्तस जहन्नयम स्थिति संत कम्यम स्थिति सत्कर्म, यानी सत्व कितना रहा उसका?
एक
निषेक बाकी रहा। स्थिति की बात है नहीं, आप प्रदेश कितने रहने पूछे, स्थिति कितनी रही है? एक निषेक बाकी है। हिंदी पढ़ेंगे। तदनंतर दो समय कम एक आवली प्रमाण काल के व्यतीत होने पर मिथ्यात्व का जघन्य स्थिति सत्कर्म होता है, एक निषेक। मिथ्यात्व की दो समय कम एक आवली प्रमाण स्थितियों को क्रम से गलाकर, एक एक गल गई ना, जिस समय दो समय मात्र काल वाली एक स्थिति शेष रहती। इसका अर्थ क्या होता है नितिन भाई, आपको पता है? तो दो समय काल वाली क्यों कहा? होगा हाँ हाँ, तो उसको दो समय वाली एक स्थिति क्यों कहते हैं? हाँ, आपको कहना नहीं आ रहा है। देखो, ये तो हमारी बात बहुत बार होगी ना। अभी ये जो उदय रूप है वो सम्यक रूप, सम्यक प्रकृति रूप उदय होगा, और जो एक इसकी बाकी है उसका काल की अपेक्षा देखेंगे तो उसका काल कितना है? दो समय। उसकी स्थिति कितनी बाकी है? दो समय बाकी। वो जब एक समय पर वर्तमान में आ जाएगी तो उसको हम मिथ्या तो नहीं कहेंगे, सम्यक प्रकृति कहेंगे। तो जो एक ही जब निषेक बाकी है तो उसको दो समय वाली एक स्थिति कहेंगे। वर्तमान से उसका नंबर कितना है? दूसरे पर है, दूसरे समय में वो स्थित है, इसलिए उसकी स्थिति कितनी है? दो समय वाली एक स्थिति ने एक निषेक। कभी कभी स्थिति के लिए भी स्थिति शब्द आता है, निषेक के लिए भी स्थिति शब्द आता है। दो समय वाली एक स्थिति ने दो समय, जिसका अभी काल कहाँ है उसका, तो दो
समय में स्थित हुई।
हाँ, दूसरे समय में स्थित
हुई वो निषेक,
उसका काल दो समय का है, और वो स्थिति ने निषेक जो है वो दूसरे समय में पड़ा है। देखो, मिथ्यात्व की दो समय कम एक आवली प्रमाण स्थितियों को क्रम से गलाकर, क्योंकि हमने देखा था जब अंतिम स्थिति कांडक हुआ था उसके बाद उच्चिष्टावली, उच्चिष्टावली समझते हैं?
बाकी रही है,
बाकी रही, जैसे उच्चिष्ट कहते हैं ना संक्षेप, परंतु अभी उच्चिष्टावली वहीं पर नाम देते हैं कि वो अभी उसका उदय रूप नहीं होगा, वो क्रम से अन्य रूप उदय में आकर फिर उदय परम मुख से उदय में आते जल, अपने रूप से उसका उदय नहीं होगा। तो कहते हैं जिस समय दो समय मात्र काल वाली एक स्थिति शेष रहती, एक स्थिति ने एक निषेक, उस समय मिथ्यात्व का जघन्य स्थिति सत्कर्म होता है। स्थिति सत्कर्म कब? दो समय वाली एक स्थिति जब आखिर है तब। और स्थिति संक्रम जघन्य कब होता है?
अंतिम कांडक
अभी हमने देखा ना, अंतिम कांडक की अंतिम फाली जब पररूप होती है तब, क्योंकि मिथ्यात्व का इससे अन्य सबसे जघन्य स्थिति सत्कर्म नहीं उपलब्ध होता। यानी मिथ्यात्व के सबसे कम से कम स्थिति इसी पोजीशन पर है, दो समय वाली एक निषेक उसका बाकी है, अभी सत्ता में कुछ नहीं रहा उसका, सब वो समय मिथ्यात्व रूप वगैरह वगैरह हो गया। शंका, तदनंतर समय में क्यों नहीं प्राप्त होता? क्योंकि वो दो समय वाली है ना, तो कहेंगे वर्तमान की कहो ना, उसका समाधान नहीं, क्योंकि जिस समय मिथ्यात्व की दो समय स्थिति शेष रहती है उस समय वह स्थूक संक्रमण के द्वारा सजातीय प्रकृति में संक्रमित होती है, इसलिए तदनंतर समय में मिथ्यात्व संबंधी प्रकृति सत्कर्म, स्थिति सत्कर्म, अनुभाग सत्कर्म और प्रदेश सत्कर्म निसत्वपने को प्राप्त हो जाते हैं। यानी ना उसकी सत्ता में प्रकृति है, ना उसका कुछ स्थिति बाकी है, ना ही अनुभाग है और ना ही प्रदेश है। इसी का विशेषण 53 पृष्ठ पर देख रहे थे। मिथ्यात्व प्रकृति का मिथ्यात्व गुणस्थान में ही उदय पाया जाता है और उसका क्षय चौथे से लेकर चार गुणस्थानों में होता है। अतः जो प्रकृतियां परोदय से क्षय को प्राप्त होती है, देखो यहीं पर ये उसका रूल भी बता दिया, परोदय से क्षय को प्राप्त होना है ना पररूप से होकर, वो तो जो कुछ उदय में आकर निकल जाना, कि जो प्रकृतियां परोदय से क्षय को प्राप्त होती है उस काल के एक समय पूर्व प्रत्येक समय में स्थिवुक संक्रमण के द्वारा उन प्रकृतियों का उदय में आने वाले सजातीय प्रकृतियों में संक्रम होता रहता है। यही कारण है अंत में मिथ्यात्व का दो समय स्थिति वाला एक निषेक शेष रहता है, जिसका उसी समय सम्यक प्रकृति में स्थिवक संक्रमण द्वारा संक्रम हो जाने के कारण अगले समय में उसका सर्वथा अभाव रहता है। यानी ये जो उच्चिष्टावली कही अभी तो मिथ्या कमी चल रही है, अन्य जहाँ जिसकी पोजीशन आएगी उसको वहाँ बताएंगे, तो एक आवली शेष रह गई है, अब उसका उदय नहीं होगा। उदय तो इसका मिथ्यात्व का यहाँ है ही नहीं है। परंतु जब क्षपणा में क्रोध मान माया लोग एक एक का जो उदय मिटता चला जाता है, तो वहाँ भी क्रोध में से आवली शेष रही तो उसका उदय रुक गया, फिर वो मान रूप से तन हो के उदय में आ गया। इसके बाद तो आगे चलकर आएगी, यहाँ तो मिथ्यात्व की बात बताए, यहाँ तो वैसे भी समय दृष्टि है तो मिथ्यात्व का उदय पहले से ही नहीं था, परंतु अभी जब आवली मात्र शेष रही तो एक एक तो उसका टर्न होकर उदय में आ रहा है, पर रूप से फिर जाएगी। अब कहते मिच्छते परम समय संकते का संकंते, संकते ही है, संकमे न संकते, ठीक है, नीचे संकते ही लिखे, मिच्छते सव संकमे न संकते, सब वो हुए, सब वो कहीं पर भी वो का वो कर देते हैं। हाँ क्या लिखा है आपको मिला क्या? संकत ही लिखा है उन्होंने, संकंत लिखा है, वैसा होना चाहिए से मुझे लगा। एक मिनट, पेज नंबर अपना 53, 337 पृष्ठ पर पांचवा नंबर का पॉइंट, मिच्छते परम समय संकंते है ना, संकंते सम्मत सम्मा मिच्छत्तानं असंखेज्जा भागा आगाइदा। उसमें भी सब्बुव लिखा, सव्व चाहिए, वहां भी संकते हुए हैं, संकते संकंते। हाँ प्राकृत हमने कभी पढ़ा ही नहीं, जब नीचे कुछ गड़बड़ लगती तब जाते हैं प्राकृत पढ़ने का। हाँ देखो अभी हम सूत्र का अर्थ देखते हैं, नीचे हिंदी में मिथ्यात्व के संक्रम होने के प्रथम समय में सम्यक समय मिथ्यात्व के असंख्यात बहुभाग को ग्रहण किया। संक्रम होने का प्रथम समय कहा, यानी जब उच्चिष्टावली बाकी रही तब, क्योंकि अभी मिथ्यात्व का तो ना, यानी उसके तो सभी स्थिति कांड घात वगैरह सब हो गए, संक्रमण से सब निकल गया उसका। अब क्या होगा यहाँ पर, समय मिथ्यात्व और समय प्रकृति का स्थिति कांड तो होगा, तो यहाँ कहते हैं
बराबर मालूम नहीं पड़ता है।
देखो यहाँ नीचे लिखा, सर्व संक्रम के द्वारा मिथ्यात्व के संक्रांत होने पर उसके प्रथम समय में, अनंतर समय है, यानी अभी यहाँ से समय मिथ्यात्व का कांडक होगा है ना, प्रथम समय में ही सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के अन्य स्थिति कांडक को ग्रहण करने वाले जीव ने घात करने से शेष बचे स्थिति सत्यम के असंख्यात बहुभाग को ग्रहण किया, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। क्योंकि अभी भी यह जो ग्रहण करेगा, क्योंकि हमने देखा था ना जब इसकी बहुत बड़ी खाली निकली थी तो ये दोनों कर्मों का पल्ले का असंख्यात अभाव शेष रहा था, अभी भी स्थिति कांड कितना होगा उसका असंख्यात बहुभाग, और उसके भी ऐसे बहुत सारे हजारों चले गए।
हजारों उसके हुए,
हजारों होते हिंदी में। हाँ संकंते मिच्छते परम समय संकंते यानी संक्रम संक्रांत होने पर ऐसा
इत्यात्र के सर्व संक्रम होने के प्रथम समय में
संक्रम होने के यानी संक्रांत होने के वहाँ संकंते है ना
हाँ।
संक्रामित होने के पहले समय में यानी संक्रमण होने के पश्चात वाले संक्रांत कहेंगे तो चलेगा। नीचे बराबर लिखा है नीचे का अर्थ क्या है निच्छते सर्व संक्रम है ना संकंते उसका अर्थ क्या क्या सर्व संक्रम के द्वारा मिथ्यात्व के संक्रांत होने पर सूत्र में भी यही चाहिए था संकंते यानी संक्रांत होने पर संक्रम होने के बदले संक्रांत होने पर प्रथम समय में संक्रांत होने पर क्योंकि संक्रमित हो चुका ना संक्रांत हो चुका प्रथम समय में सम्यक का समय मिथ्यात्व के असंख्यात बहुभाग को ग्रहण किया। हाँ अर्थ है कि संक्रांत होने पर कहो या संक्रम होने के बाद कहो ठीक है। अभी नीचे पढ़ेंगे 72 नंबर का पॉइंट सर्व संक्रम के द्वारा मिथ्यात्व के संक्रांत होने पर उसके प्रथम समय में ही सम्यक का समय मिथ्यात्व के अन्य स्थिति कांडक को ग्रहण करने वाले जीव ने घात करने से शेष बचे स्थिति सत्कर्म के असंख्यात बहुभाग को ग्रहण किया यह उक्त कथन का तात्पर्य है। यह अन्य तीन नहीं करण कर रहे हैं वही अनिवृत्तिकरण ही चल रहा है अभी। इस प्रकार इस क्रम से सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का स्थितिकांड घात करता हुआ तत्प्रायोज्य संख्यात हजार स्थितिकांडकों के बाद अब क्या होगा सम्यक मिथ्यात्व का अंतिम स्थितिकांडक को ग्रहण करता है। अब इसमें भी ऐसा ही होगा उसकी सावली छोड़ेगा और बाकी सारा ही सम्यक रूप और उसे ग्रहण करता हुआ उदयावली के बाहर के समस्त द्रव्य को ग्रहण करता है इस बात के कथन के लिए आगे का सूत्र कहता है एवं संख्येजेहिं ठिदिखण्डयेहिं गदेहिं सम्मामिच्छत्तम आवलीय बाहिरं सवम आगाइदम। इस प्रकार संख्यात हजार स्थितिकांडकों के व्यतीत होने पर सम्यक मिथ्यात्व के उदयावली के बाहर से समस्त द्रव्य को ग्रहण किया। अब यहाँ तो द्रव्य कह ही सकते क्योंकि पूरे निषेकों में जो उसने द्रव्य है वो सबको ग्रहण किया यह सूत्र गतार्थ है। परंतु उस समय सम्यक के शेष रहे स्थिति विशेष के प्रमाण का उदाहरण करने के लिए आगे के सूत्र प्रबंध को कहते हैं। हमने क्या देखा जब मिथ्यात्व को आवली प्रमाण छोड़कर उसका अंतिम संक्रमण या अंतिम कांड ग्रहण किया था और संक्रमण द्वारा अन्य रूप हुआ था तब अन्य दो कर्मों की स्थिति कितनी शेष रही थी पल्ले का संख्या का था। अब जब सम्यक मिथ्यात्व का सबका सब सर्व संक्रमण होगा तो सम्यक प्रकृति की शेष स्थिति कितनी रहेगी इसका होने के बाद उसका निर्णय करने के लिए ये बात आती है। वो 8 वर्ष की बात करेंगे अभी हम देखो साधे सम्मत तस्य दोन्नी उपदेशा इसमें भी दो उपदेश है केवी भणंती संख्यज्जानी वत्स सहस्रानी छिदानीति पवायुज्यंतेन उपदेशेन अठवत्सानी सम्मत्तस्य शेषाणी ये सममत्तस्य हुआ है सम्मत्तस्य शेषाणी म नहीं करें शेषाओ ठिदियो आगाई दाओ थी हिंदी पढ़ेंगे। उस समय सम्यक प्रकृति के संबंध में दो उपदेश उपलब्ध होते कितने ही आचार्य कहते कि संख्यात हजार वर्ष प्रमाण स्थिति शेष रहती किंतु प्रवाह्यमान उपदेश के अनुसार, जो प्रवाह से चला रहा है उसके उपदेश के अनुसार सम्यक की 8 वर्ष प्रमाण स्थिति शेष रहती है। यहाँ कांडगात होते होते अंतिम कांड किसका ग्रहण किया? समय मिथ्यात्व का। और जब वो उसमें गिरेगा
तो वहाँ पे
उसका, उसको सम्यक प्रकृति में भी कांडक हो रहे थे, नीचे 8 वर्ष के छोड़कर ऊपर का कांडक चल रहा था, और इसका नीचे आवली को छोड़कर पूरा ही कांडक रूप से उसने संक्रमित कर दिया। शेष सब स्थितियां ग्रहण की जा चुकी है, अर्थात स्थिति कांडक रूप से घात को प्राप्त हो चुकी है। ताधे अर्थात उस अवस्था में सम्यक्त्व के ग्रहण करने से शेष स्थिति सत्कर्म के प्रमाण के कथन करने में 2 उपदेश उपलब्ध होते हैं। मैंने सम्यक्त्व का कांडक में ग्रहण नहीं किया और बाकी रहा वो कितना है उसके बारे में 2 उपदेश है, क्योंकि पूर्वाचार्यों का इस विषय में अभिप्राय भेद देखा जाता है। उनमें से एक उपदेश प्रवाह्यमान है और दूसरा उपदेश अप्रवाह्यमान है। इन दोनों का अर्थ पहले के समान कहना चाहिए। यहाँ पर अप्रवाह्यमान उपदेश का अवलंबन करने वाले कितने ही आचार्य कहते हैं उस समय सम्यक प्रकृति की संख्यात हजार वर्ष स्थिति शेष रहती है, शेष सब स्थितियाँ कांडक घात रूप से ग्रहण की जा चुकी है। शंका, इस संप्रदाय का अप्रवाह्यमानपना किस कारण से जाना जाता है? समाधान, इसी चूर्णी सूत्र से जाना जाता है। सूत्र में ही बताया ना कि 2 उपदेश है करते, किंतु सर्व आचार्य सम्मत ऐसे आर्यमंक्षु और नागहस्ती महावाचकों के मुख कमलों से निकले हुए प्रवाह्यमान उपदेश के अनुसार सम्यक्त्व की 8 वर्ष स्थिति शेष रहती है, शेष समस्त स्थितियों का कांडक घात हो गया है ऐसा जानना चाहिए। मैंने सम्यक प्रकृति में जो वहाँ का स्थिति कांडक होगा वो 8 वर्ष को छोड़कर ऊपर का होगा, और सम्यक मिथ्यात्व में आवली को छोड़कर पूरा होगा, और इसका प्रवाह्यमानपना असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि इसी यति वृषभ के उपदेश से उसके प्रवाह्यमानपने का निश्चय होता है। अब इन दोनों उपदेशों को संग्रह योग्य समझकर व्याख्यान करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान काल में किसका परिग्रह किया जाए इस प्रकार विशिष्ट उपदेश नहीं पाया जाता। यानी किसको स्वीकारना किसको छोड़ना ये हम नहीं कह सकते। इस प्रकार सर्वप्रथम सम्यक मिथ्यात्व के अंतिम स्थिति कांडक के ग्रहण के समय सम्यक्त्व कांडक घात रूप से जितनी स्थिति ग्रहण की जा चुकी है उनसे अतिरिक्त शेष स्थिति के प्रमाण के निर्णय का उपदेश भेद के आश्रय से कथन कर अब सम्यक मिथ्यात्व के अंतिम स्थिति कांडक के सम्यक्त्व के ऊपर सर्वसंक्रम द्वारा संक्रमित होने पर जो अर्थ विशेष प्राप्त होता है उसका कथन करने के लिए आगे के सूत्र का अवतार करते हैं, जो हम कल देखेंगे। जावानी के ज्ञान से तुझे दो पालो सोवानी मस्तक नमो सदा देत हो। मयंक भाई।